ॐ नमो भगवते वासुदेवाय प्रायेषु अवत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके मूकं धृति वाचालं पङ्गुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम् आज हम श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध सत्रहवां अध्याय श्लोक नंबर 27 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम महाराज पृथ्वी का पृथ्वी पर कुपित होना। त्वं स्तब्धं दुर्मदं नीत्वा माया गान्ति लसहस्रैः आत्मयोग बले नीमा हम प्रजा दुर्मदं नीत्वा माया गान्ति लसहस्रैः आत्मयोग बले नीमा धारयिष्यामि हम प्रजा त्वं स्तब्धं दुर्मदं नीत्वा माया गान्ति लसहस्रैः आत्मयोगो बले नीमा धारयिष्याम्यहं प्रजा
धर्म
अत्यंत गर्विले दुर्मदाम उन्मत्त नित्वा ऐसी दशा में ले जाकर मायागम छद्मगा तिलस खंड खंड सरे अपने बाणों से आत्म अपने योग वाले न योग शक्ति से इमा ये सब धारयिष्यामि धारण करूंगा अहम मैं प्रजा सभी नागरिक या जीवात्माएं। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। तुम गर्व से अत्यंत फुली हुई हो और प्रायः उन्नत सी हो गई। इस समय तुमने अपनी योग शक्ति से गाय का रूप धारण कर रखा है, तो भी मैं तुम्हें अनाज के दानों की भांति खंड खंड कर दूं और अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा। तत्पर पृथ्वी ने राजा पृथ्वी से कहा था कि यदि ये उसका विनाश करेंगे तो वो तथा उसकी प्रजा गर्भ सागर के जल में गिर जाएगी। अब राजा पृथु उसका उत्तर दे रहे हैं, यदि पृथ्वी में राजा द्वारा वध किए जाने से अपने बचने के लिए योग शक्ति के द्वारा गाय का रूप धारण कर लिया था, किंतु राजा को यह तथ्य ज्ञान था और वो अन्न के छोटे टुकड़ों की भांति उसके खंड खंड करने में तनिक भी नहीं हिचकेगा। जहां तक प्रजा के विनाश की बात थी, महाराज पृथ्वी ने बलपूर्वक कहा कि वे अपनी योग शक्ति से प्रजा को संभाल लें, उन्हें पृथ्वी की सहायता नहीं चाहिए। भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण पृथ्वी महाराज में संकर्षण की शक्ति थी, जिसे विज्ञानी जन गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। भगवान असंख्य ग्रहों को अंतरिक्ष में बिना किसी अवलंब के धारण किए हुए, उसी प्रकार पृथ्वी महाराज को भी अपनी प्रजा को तथा स्वयं को पृथ्वी की सहायता लिए बिना अंतरिक्ष में धारण किए रहने में कोई कठिनाई ना होती। भगवान को योगेश्वर कहा गया। फलतः राजा ने पृथ्वी को सूचित किया कि पृथ्वी की सहायता के बिना उसके स्थिर रहने के बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनसुवाचया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथ नितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणमृता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कन्द राधाकन्दनमस्तुते। तप्तकंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशाखांसुते देवी प्रणामि हरि प्रिये चाह कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च अतीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबलाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमो गौरतिसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीमद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कांस्तब्धं दुर्मदं नित्वा मायागं तिलसहस्रे आत्मयोग बलेन धारयिष्यामि अहं प्रजा। श्रीमद् भागवत के श्लोक में महाराज पृथ्वी के तर्क का उत्तर दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार महाराज पृथु शासन भार ग्रहण करने के उपरांत फिर भी उनके राज्य में प्रजा खाद्य को प्राप्त नहीं कर रही थी, हर तरह से प्रजा दुखी थी और सारी प्रजाएं महाराज पृथ्वी के पास गई थी और उनसे ये निवेदन किया था कि हमें आप राजा हैं और आपका कर्तव्य है हम लोगों का भरण पोषण करना, हमें उपयुक्त सेवा में लगाना और हमें खाद्य वस्तु प्रदान करना। तो हम लोग जानते हैं कि महाराज पृथु प्रकट होने से पहले किस प्रकार वेण उनके पिता जो थे वेण किस प्रकार पापाचारी थे और उनके राज्य में किस प्रकार अनाचार और अत्याचार चारों ओर परिव्याप्त हुआ था, जिसके कारण पृथ्वी देवी खाद्य शस्यों को अपने गर्भ में छिपाकर रखी हुई थी, वो प्रदान नहीं कर रही थी प्रजा को, क्योंकि जब कभी लोग पापाचार में रत रहते हैं, धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते हैं और खाद्य शस्य को या खाद्य को भगवान को अर्पित किए बिना स्वयं ग्रहण करते हैं जीवा की लालसा के कारण, तो उस स्थिति में पृथ्वी देवी खाद्य शस्य को गुप्त रखती है, वो प्रदान नहीं करती, क्योंकि ये मनुष्य का कर्तव्य है। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्विषे, तो यज्ञ का अवशिष्ट अन्न सभी को ग्रहण करना है, अर्थात भगवान को भोग लगाकर उनका प्रसाद सभी को सेवन करना है। किंतु जो लोग भगवान को भोग नहीं लगाते हैं और अपनी जिह्वा की लालसा को चरितार्थ करने के लिए खाद्य प्रस्तुत करते हैं, ये लोग पापी विभक्षण कर रहे हैं। भुंजते ते त्वहं पापं ये पच्यन्ति आत्मकारणात्, जो अपने लिए भोजन बनाते हैं
भगवान के लिए नहीं बनाते हैं, भगवान को अर्पित नहीं करते, तो ये लोग पाप ही खाते हैं। तो ऐसे जो पापाचारी हैं, जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं और पापाचार में रत रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए पृथ्वी देवी खाद्य शस्य प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। वो खाद्य शस्य को अपने गर्भ में गुप्त रख सकती है और रखती है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी वैण के राज्य में, क्योंकि वैण पापाचारी था और उसके राज्य में चोर डाकुओं का प्राधान्य था। धार्मिक अनुष्ठान नष्ट हो चुका था, ब्राह्मण गण धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए डरते थे, भयभीत रहते थे, क्योंकि वैण ने यह घोषणा कर दी थी कि उसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई भगवान नहीं है, वो स्वयं भगवान है, इसलिए उसकी पूजा करनी चाहिए। और ब्राह्मणगण जानते थे कि वो भगवान नहीं था, इसलिए ब्राह्मणगण उसकी पूजा नहीं करते थे, किंतु ये प्रतिबंध था भगवान की पूजा करने के लिए, यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए, तो ब्राह्मणगण नहीं कर पा रहे थे, बहुत दुखी थे। तो इस प्रकार पृथ्वी महाराज को उत्तराधिकार सूत्र में राज्य प्राप्त हुआ था। ऋषियों ने बैंक के जंघा को मत करके महाराज पृथ्वी को उत्पन्न किया था। तो उत्तराधिकार सूत्र में ऐसा राज्य उनको प्राप्त हुआ था जहां पापाचार परिव्याप्त था, लोग कष्ट में थे, यज्ञ अनुष्ठान नहीं हो रहा था। अब जबकि महाराज पृथ्वी ने यह सब प्रारंभ किया, यज्ञ अनुष्ठान और धर्म कार्य आदि, उनके राज्य में यह पुनः प्रारंभ हुआ, फिर भी पृथ्वी देवी ये खाद्य शस्य प्रदान नहीं कर रही थी। तो जब प्रजाओं ने अभियोग किया महाराज पृथ्वी के सामने, वो कितने दुखी हैं और खाद्य शस्य उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो पृथ्वी महाराज ने सोचा कि इसका क्या कारण हो सकता है, जबकि हमारे राज्य में हमने धर्म को पुनः स्थापित किया है, धर्म अनुष्ठान करने के लिए प्रजाओं को छूट है, तो ऐसा क्यों है कि लोगों को खाद्य शस्य उपलब्ध नहीं हो रहा है और प्रजा भूखे हैं, प्रजा भूखी है। तो महाराज पृथ्वी ने सोचा थोड़े समय के लिए और उनको उसका उत्तर मिल गया कि ये पृथ्वी ये खाद्य शस्य प्रदान नहीं कर रही है, अपने घर में छिपा करके रखी है। तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार यज्ञ अनुष्ठान करने से हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, और उनकी प्रसन्नता से हमारे जीवन धारण करने के लिए जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। इंद्र वृष्टि करते हैं, वर्षा करते हैं, पृथ्वी खाद्य शस्य उत्पन्न करती है और हम लोग उस खाद्य शस्य को प्राप्त होकर परिपुष्ट होते हैं। तो जब ये धर्म अनुष्ठान चालू हो गया महाराज पृथ्वी के राज्य में, फिर भी पृथ्वी खाद्य शस्य नहीं दे रही थी, खाद्य शस्य उत्पन्न नहीं हो रहा था, तो महाराज पृथ्वी ने समझ लिया कि ये पृथ्वी खाद्य शस्य को अपने घर में छिपा करके उसने रखा है। तो धनुष बाण निकाल पृथ्वी को दंड देने के लिए, और हाथ में धनुष और बाण लिए, जब पृथ्वी महाराज ने बाण का संधान किया पृथ्वी की ओर पृथ्वी को दंडित करने के लिए, तो पृथ्वी भयभीत हो गई कि महाराज पृथ्वी जो भगवान के सत्यावेश अवतार थे और भगवान की पालन शक्ति लिए आए थे, तो ये प्रजा पालन शक्ति, तो प्रजाओं को पालन करना उनका कर्तव्य था। तो जब उनके हाथ में धनुष बाण देखा पृथ्वी ने, वो भयभीत हो गए और भयभीत होकर तुरंत उन्होंने गाय का रूप ले लिया अपनी योग शक्ति के प्रभाव से, क्योंकि समाज में ये मान्यता है कि गौ का वध नहीं किया जा सकता और विशेष रूप से कोई राजा कभी भी गौ का वध नहीं कर सकता। तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और गाय का रूप धारण करके वो दौड़ रही और महाराज पृथु हाथ में धनुष बाण लिए उसका पीछा कर रहे हैं और पृथ्वी जहां भी जा रही है गाय के रूप में, स्वर्ग मर्त पाताल हर जगह, तो वो देखती है कि महाराज पृथु उसके पीछे धनुष बाण लिए आ रहे हैं। तो अंत में पृथ्वी को कहीं स्थान नहीं मिला, किसकी शरण में जाए, जिसको भगवान मारना चाहते हैं उसकी रक्षा कौन कर सकता है। जिस प्रकार दुर्वासा मुनि के पीछे चक्र, भगवान का सुदर्शन चक्र उसके दुर्वासा मुनि का पीछा कर रहे थे, तो दुर्वासा मुनि घूम रहे थे किसकी शरण में जाए, ब्रह्मा शिव की शरण में गए, फिर भी उन लोगों ने दुर्वासा मुनि की रक्षा नहीं कर नहीं की। और जब वो भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने भी मना कर दिया, जो कि शरणं शरणं, सभी के शरण के शरण ग्रहण करने के लिए योग्य व्यक्ति है भगवान विष्णु, उन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिए व्यक्ति को, तो वे भी मना कर देते हैं क्योंकि दुर्वासा मुनि ने वैष्णव अपराध किया था और वैष्णव अपराध को भगवान भी सहन नहीं करते। तो अब महाराज पृथु जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, वो तो पृथ्वी को मारना चाह रहे हैं, तो अब पृथ्वी को कौन शरण दे सकता है, कौन उसकी रक्षा कर सकता है। इसलिए पृथ्वी ने जब देखा कि अब उसकी रक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता, कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता, तो अंत में वो महाराज पृथ्वी की शरण में आए। तो महाराज पृथ्वी की ओर मुड़कर पृथ्वी ने महाराज पृथ्वी से कहा, उन्होंने कुछ तर्क दिए उनका वध नहीं करने के लिए। तो उन तर्कों में से एक तो पृथ्वी यह तर्क दे रही थी कि मैं स्त्री हूं, अबला हूं, बलहीना हूं, अर्थात दुर्बल, जो दुर्बल व्यक्ति हैं बलवान व्यक्ति को उसका वध नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत है, क्योंकि बलवान व्यक्ति का वध कर सकता है, किंतु दुर्बल व्यक्ति का वध उसको नहीं करना चाहिए, वो धर्म विरुद्ध है। और एक तो पृथ्वी दुर्बला और स्त्री का वध तो शास्त्र में कहीं भी उल्लेख नहीं, किसी भी स्थिति में स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, चाहे किसी स्त्री ने कोई पाप कर्म क्यों ना किया हो, फिर भी उसका वध नहीं करना चाहिए। तो पृथ्वी देवी ये तर्क सब दे रही थी कि महाराज पृथ्वी को उनका वध नहीं करना चाहिए, और फिर उसने गाय का रूप ले लिया था, जबकि महाराज पृथ्वी को ये पता था कि ये वस्तुतः गाय नहीं है,
ये पृथ्वी ने ऐसा रूप ग्रहण किया और पृथ्वी ने एक विशेष तर्क दिया था, जिस तर्क को महाराज पृथु इस श्लोक में उस तर्क को अस्वीकार कर रहे हैं, काट रहे हैं, नकार रहे हैं। तो पृथ्वी ने कहा था कि मेरे ऊपर आप खड़े हैं और आपकी सारी प्रजा मेरे ऊपर निवास कर रही है, और यदि आप मेरा वध कर देंगे तो पृथ्वी के नीचे क्या है, पानी है, गर्भ सागर, पाताल लोक के नीचे। तो एक बार पृथ्वी गर्भ सागर में डूब गई थी, भगवान बराहदेव ने निकाला था। तो पृथ्वी कह रही है कि यदि आप मेरा वध कर देंगे, मेरा खंड खंड कर देंगे शरीर को, तो मैं गर्भ सागर में डूब जाऊं। तो आप और आपकी प्रजा कहां पर खड़े रहे, कहां पर स्थित होंगे? तो इसलिए मेरा वध करना इसमें केवल मेरा अनिष्ट नहीं है, आपका भी अनिष्ट अंतर्हित है। तो जब पृथ्वी ने इस प्रकार कहा तो पृथु महाराज पृथ्वी के तर्क का उत्तर दे रहे, तो कह रहे हैं कि त्वं स्तब्धम्। वस्तुतः इसमें एक बात देखने की है कि अभी तक पृथ्वी पृथु महाराज की शरण में नहीं आई है। जो शरण में आने वाला व्यक्ति कभी तर्क नहीं करेगा, अपनी रक्षा के लिए वो तर्क नहीं करता है। जो शरण में आता है वो छोड़ देता है कि आप जैसा करें, जिसके शरण में व्यक्ति आता है उस पर छोड़ देता है कि आप मेरी रक्षा करें या ना करें आप पर निर्भर है। पृथ्वी को ऐसा कहना चाहिए था, किंतु वो कह रही है कि यदि मैं नहीं बचूंगा, बचूंगी, मैं नहीं रहूंगी, तो आप कहां रहेंगे और आपकी प्रजा कहां रहेगी? इसका अर्थ है पृथ्वी यह कह रही है कि आपकी स्थिति और आपके आपकी प्रजा की स्थिति मेरे ऊपर निर्भर है। तो ये एक तरह से अहंकार का द्योतक है। तो इसलिए पृथ्वी महाराज समझ गए पृथ्वी क्या कहना चाह रहे हैं, और पृथ्वी को पता नहीं है पृथ्वी महाराज की क्या स्थिति है। इसलिए पृथ्वी महाराज ने कहा तां स्तब्धम्, तुम इतना विनम्र नहीं है, तुम में नम्रता नहीं है, तुम में अहंकार है, और मैं इस पृथ्वी का राजा हूं और मेरे अधीन सारी प्रजा है और पृथ्वी का शासन मैं कर रहा हूं, और तुम पृथ्वी कह रहे हो कि तुम्हारे बिना मेरी स्थिति नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम में बहुत गर्व अहंकार, इसलिए तुम नम्रता व्यक्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी नम्र नहीं हो सकता, और जिसमें अहंकार नहीं है, गर्व नहीं है, वो नम्रता को व्यक्त कर सकता है, वो नम्र हो सकता है। तो इसमें पृथ्वी के तर्क से यही पता चलता है कि पृथ्वी में गर्व है, अहंकार है। वो कह रही है कि उसके बिना पृथ्वी महाराज की स्थिति या उनके प्रजा की स्थिति नहीं, इसलिए पृथ्वी महाराज इस शब्द का प्रयोग कर रहा है, त्वं स्तब्धम्, तुम्हें गर्व अधिक है, अहंकार अधिक, जिसके कारण मेरे जैसे व्यक्ति के प्रति तुम नम्र नहीं हो, मैं तुम्हें दंडित करने के लिए प्रस्तुत हूं, फिर भी तुम नम्र नहीं हो, तुम ये तर्क दे रही हो कि तुम्हारे बिना मेरी स्थिति असंभव है। और फिर कह रहे हैं दुर्मदा, और तुम में मद है, अर्थात गर्व के कारण व्यक्ति अपने हित और अहित का ज्ञान खो बैठता है, अंध बन जाता है। दुर्मदांधा, दुर्मद से जो अंधे है, हिताहित ज्ञान खो बैठे, अर्थात जो अपनी बात सोचते हैं ये पागल के समान होते हैं लोग, जो केवल अपनी चिंता करते हैं, अपने सुख की चिंता, दूसरों की कोई चिंता नहीं है, दूसरों का उपकार करना, दूसरे लोग कष्ट में है उनको कष्ट से बचाना, उनका कुछ उपकार करना, सहायता प्रदान करना, इसके बारे में ये लोग नहीं सोचते हैं, जो दुर्मदांध है, दुर्मद है। तो ये लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। संसार में ऐसे लोग बहुत सारे देखे जाते हैं जो अपने सुख में ही संतुष्ट है, जो अपने लिए सोचते हैं कैसे सुख में रहेंगे, उनका परिवार कैसे सुख में रहे, चाहे दूसरे लोग मरे कोई दिक्कत कष्ट नहीं है, दूसरों का क्या होता है उनके प्रति कोई ध्यान नहीं है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, आप लोग हम लोग जब जाते हैं किसी ट्रेन में, लोग इतना हल्ला गुल्ला करते हैं ट्रेन में अपने आनंद के लिए, उनको कोई ख्याल नहीं कि दूसरों का, दूसरों को क्या असुविधा होती, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, कोई ख्याल नहीं। दुर्मद है, दूसरों के सुख दुख को नहीं देखते, अपने में आप संतुष्ट है। तो इसलिए महाराज पृथ्वी देवी को कह रहे हैं कि तुम दुर्मद, दुर्मदा। क्यों? क्योंकि हमारी सारी प्रजा भूख के मारे मर रही है, कष्ट में है, और तुम खाद्य शस्य को अपने घर में छिपा करके बैठी हो, तुम्हें दूसरों का कष्ट तुम नहीं देखती, अपने आप में संतुष्ट हो, इसलिए तुम दुर्मदा है। अर्थात जो अपना स्वार्थ देखते हैं, परार्थ के लिए कोई चिंता नहीं, ना परार्थ निष्ठा, दूसरों का कैसे लाभ होगा, दूसरे लोग कैसे सुख को प्राप्त करेंगे, इसके लिए कोई चिंता नहीं, तो ऐसे लोगों को स्वार्थी कहा जाता है। और वस्तुतः ही अपना स्वार्थ भी नहीं जानते, नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, ये लोग केवल भौतिक सुख प्राप्ति को अपना स्वार्थ मानते हैं, उनको पता नहीं है कि उनका वास्तविक स्वार्थ है भगवान विष्णु। दुराशा आज वही अर्थ माने नहीं, ये लोग बाह्य अर्थ को ग्रहण किए, जो भौतिक सुख, जो क्षणिक सुख है उसी का सुख मान रहे हैं, जो नित्य सुख उसके लिए कोई चेष्टा नहीं, नित्य सुख के प्राप्ति के लिए कोई चेष्टा नहीं है, क्षणिक सुख के पीछे दौड़ते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का कोई परार्थ निष्ठा नहीं है, दूसरों के सुख दुख में ये भागी नहीं होते, किंतु जो वस्तुतः भगवान विष्णु को अपना स्वार्थ मानते हैं, भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो अपना सुख नहीं देखते हैं, हर समय दूसरों का सुख देखते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद वृंदावन में रहते थे किंतु परार्थ निष्ठा, संसार के उपकार के लिए अपने सुख को त्याग करके 70 साल की आयु में कष्ट उठाते हुए, संघर्ष करते हुए वो कृष्ण चेतना के प्रचार सारे संसार में कर रहे थे। ये वैष्णव का हृदय होता है, भक्त का हृदय होता है, जो पर दुखे दुखी होता है, पर सुखे सुखी होता है, किंतु जो दुर्मद है वो दूसरों के सुख में दुखी होता है और दूसरों के दुख में सुखी होता है। तो ना परार्थ निष्ठा, ऐसे व्यक्तियों का कोई परार्थ निष्ठा नहीं। तो इसलिए पृथ्वी महाराज कह रहे हैं कि तं स्तब्धं दुर्मदं नित्ता मायागं तिलसं शरीर। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए जीवन धारण करता है, उसका इस संसार में जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये संसार के लिए भार सदृश है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए तरह तरह के पापाचार में रत रहते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों पर हिंसा का आचरण करते हैं अपने सुख के लिए, तो ऐसे व्यक्ति संसार के लिए, पृथ्वी के लिए भार सदृश है। और ऐसे व्यक्तियों का जीवित रहना संसार के लिए अच्छा नहीं। तो पृथ्वी महाराज जो कि धर्म के तत्व को जानते थे, और यहां पृथ्वी देवी जो दूसरों के सुख के लिए उन्मुख नहीं है, वो नहीं देख रही है कि दूसरों का कैसे सुख होगा, वो खाद्य शस्य को प्रदान नहीं कर रही है दूसरों के सुख के लिए, उसका वध करना चाह रहे थे, उसको दंडित करके वध करना चाह रहे थे, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को दंडित करना ये राजा का कर्तव्य होता है। जो दूसरों के सुख दुख से विमुख रहते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों पर हिंसा आचरण करते हैं, तो महाराज पृथ्वी इसलिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दंडित करूंगा क्योंकि तुम केवल अपना स्वार्थ देख रही हो, प्रजाओं का स्वार्थ नहीं देख रहे। अब पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया था तो पृथ्वी महाराज कैसे गाय का वध कर सकते हैं? तो पृथ्वी महाराज कह रहे हैं कि यह गाय नहीं है। यद्यपि इसने गाय का रूप धारण कर लिया है पृथ्वी ने, किंतु यह वस्तुतः गाय नहीं। तो कौन है? माया गा। ये माया गा गाय है, गाय है ये माया गा, माया गाय, माया से बनी हुई, वस्तुतः गाय नहीं। जैसे हम देखते हैं वृंदावन लीला में अरिष्टासुर आया था, तो कौन सा रूप धारण किया था? बैल का रूप। तो हमारे धर्म में गोवध करना पाप समझा जाता है, तो असुर लोग भी इस प्रकार रूप धारण करके आ जाते हैं, किंतु भगवान कृष्ण को पता था कि असुर आया है गौ का रूप धारण करते हुए, तो भगवान ने उसका वध कर दिया, जबकि गोपियों ने उनके साथ मजाक उड़ाया, प्रयास किया कि आपने गौ का वध किया इसलिए हमारा स्पर्श मत कीजिए। तो भगवान ने कहा कि ये तो माया भी था, ये गौ नहीं था, ये माया से असुर बन गाय का बैल का रूप ले लिया था। फिर भी गोपियों ने नहीं माना, तो उन्होंने कहा ठीक है हम शुद्ध हो जाते हैं तीर्थों को बुला करके। तो राधा कुंड श्याम कुंड की सृष्टि की भगवान, और फिर राधा कुंड की सृष्टि हुई हम लोग जानते हैं। तो पृथ्वी महाराज को ये पता था कि पृथ्वी ने माया गाय का रूप धारण किया, इसलिए उसको वध करना ये पाप नहीं। तो फिर कहते हैं तिलसा शरीर, तो पृथ्वी महाराज इतने क्रोधित थे पृथ्वी के ऊपर, उनका शरीर कांप रहा था, जैसे क्रोध का लक्षण प्रकट होता है शरीर में। और पृथ्वी महाराज कहते थे पृथ्वी को कि तिलसा शरीर, मैं अपने बाणों से तुम्हारे शरीर को तिल, तिल के समान, तिल बहुत छोटा होता है, तिल के समान खंड खंड कर दूं, तुम्हारे शरीर को बाणों से काट कर, और सत सहस्र भाग कर दूं, सहस्र भागों में परिणत कर दूंगा तिल के समान। ये अत्यंत क्रोधित होने का लक्षण है कि कोई ऐसा कहे कि तुम्हारे शरीर को सहस्र खंड कर दो, क्रोधित होकर कह रहे। और तुम जो कह रही हो कि तुम मुझे धारण की हुई हो या मेरी प्रजा को धारण की हुई हो, तुम मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। तुम यदि नहीं भी रहोगी, पृथ्वी महाराज कह रहे कि यदि पृथ्वी नहीं भी रहेगी फिर भी मैं अवश्य रहूंगा, क्योंकि भगवान के अवतार थे। और केवल मैं नहीं, मेरी सारी प्रजा की स्थिति भी ऐसी ही बनी रहेगी, उनका कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं उनको संरक्षण देने वाला हूं। तो कैसे पृथ्वी महाराज ऐसा कर सकते हैं? तो पृथ्वी ने जिस प्रकार योग शक्ति के प्रभाव से गाय का रूप ले लिया था, किंतु भगवान योगेश्वर है, सारी योग शक्तियों के ईश्वर है। तो जहां भगवान है जो योगेश्वर कहलाते हैं, उनसे योग शक्तियां दूसरों को प्राप्त होती है। कभी कभी असुर लोग भी योग शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, देवता लोग भी योग शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, इसे मनुष्य भी योग शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। तो इन योग शक्तियों को वो कहां से प्राप्त होते हैं? योगेश्वर भगवान कृष्ण से प्राप्त होते हैं। सारी योग शक्तियों के परम ईश्वर, परम नियंत्रणकारी भगवान श्री कृष्ण। तो कोई थोड़ी सी योग शक्ति प्राप्त होकर भगवान को कहे कि आप कैसे जीवित रहेंगे या कैसे आपकी स्थिति रहेगी, तो यह उपहास की बात है कि योगेश्वर से कह रहे पृथ्वी कि आपकी स्थिति कैसी रहेगी, आप कैसे रहेंगे यदि मैं नहीं रहूं, आपकी प्रजा कहां रहेगी। तो इसलिए पृथ्वी महाराज कह रहे हैं कि जो सारी योग शक्ति के ईश्वर हैं, कह रहे हैं आत्मयोग बलेन, अपने आत्मयोग बल के द्वारा, अर्थात अपनी योग शक्ति के द्वारा, मैं अपने को धारण करूंगा और इमान मेरी प्रजाओं को धारण करूंगा। तो प्रजा कहकर पृथ्वी महाराज ये संकेत कर रहे हैं कि प्रजायते इति प्रजा, जो जन्म लेता है वो प्रजा। तो राजा के राज्य में जो कोई भी जन्म लेता है वो प्रजा माना जाता है। केवल मनुष्य प्रजा नहीं है, पशु पक्षी कीट पतंग
जो भी जन्म लेते हैं उस राज्य में ये सारी प्रजा, उस राज्य की प्रजा, तो इन प्रजाओं का इमाम, इन प्रजाओं को मैं अपनी योग शक्ति के प्रभाव से धारण करूं, पृथ्वी महाराज कह रहे। तो कैसे पृथ्वी महाराज धारण करेंगे इन प्रजाओं को पृथ्वी जब नहीं रहेगी? जब भगवान इस संसार में, इस सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांडों को धारण कर रहे हैं, कहां पर? आकाश में। ये सब असंख्य ब्रह्मांड ये आकाश में तैर रहे हैं, उनका उनको धारण करने के लिए और कोई नहीं है, भगवान स्वयं धारण करते। इस प्रकार विज्ञानी जन कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, माध्याकर्षण शक्ति से ये सब ब्रह्मांड तैर रहे, किंतु माध्याकर्षण शक्ति कहां से आती है उनको पता नहीं, कि भगवान अपनी शक्ति से इन सारे ब्रह्मांड को धारण कर रहा है, ये आकाश में शून्य में तैर रहा है। तो क्या भगवान अपने को और अपने प्रजाओं को ऐसे धारण नहीं कर सकते? धारण अवश्य कर सकते। इसलिए प्रभुपाद से कह रहे हैं कि पृथ्वी महाराज ये भगवान शंकरचरण की शक्ति को प्राप्त थे। भगवान शंकरचरण ही सारे ब्रह्मांडों को धारण करते हैं और उनका विस्तार रूप है अनंत शेष, शेषनाग। जो अपने मस्तक पर असंख्य ब्रह्मांड को धारण करते हैं सरसों के बीज के समान, एक एक ब्रह्मांड, उनको पता नहीं चलता कौन सा ब्रह्मांड कहाँ है। तो इस प्रकार भगवान अपनी शक्ति से जब असंख्य ब्रह्मांडों को धारण कर रहे हैं, तो क्या एक पृथ्वी की प्रजा को धारण नहीं कर सकते? इसलिए पृथ्वी महाराज कह रहे हैं कि आत्म बले, आत्मयोग बले, आत्मयोग के बल पर मैं धारण कर सकता हूं इन प्रजाओं, अर्थात अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो जिस भगवान की इच्छा से ये सृष्टि संभव होती है, भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान ने इच्छा की सृष्टि संभव हो, भगवान इच्छा करते हैं सृष्टि ध्वंस हो जाती, इच्छा मात्र से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए भगवान को सत्य संकल्प कहा गया है, जो भी संकल्प करते हैं, जो भी इच्छा करते हैं वो सत्य में परिणत हो जाता है तुरंत। तो ऐसे जो भगवान हैं उनके लिए एक पृथ्वी की प्रजा को धारण करना कोई बड़ी बात नहीं। जब वो पृथ्वी को ध्वंस कर सकते हैं तो पृथ्वी को धारण करने में क्या कष्ट है? इसलिए कह रहे हैं आत्मयोग बले न इमा धारयिष्यामि अहम प्रजा। तो अपनी योग शक्ति के द्वारा मैं इन प्रजाओं को धारण कर लूंगा, तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, या मेरी प्रजाओं की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात मैं तुम्हारे ऊपर निर्भरशील नहीं। तो यदि कोई भगवान की सृष्टि हो और सृष्टि स्रष्टा को कहे कि मेरे बिना आप रह नहीं सकते, जीवित नहीं रह सकते, तो ये उपहास की बात है। इस सृष्टि स्रष्टा को कभी ऐसा नहीं कह सकते, सृष्टा के बल पर सृष्टि संभव है, सृष्टा के कारण सृष्टि संभव है,
तो ये पृथ्वी भगवान की सृष्टि है और पृथ्वी कह रही कि मैं नहीं रहूंगी तो आप कैसे रहेंगे, आपकी प्रजा कहां रहेगी, आप कहां रहेंगे। तो पृथ्वी महाराज इस तर्क को नकार रहे हैं कि तुम्हारे बिना भी मैं रह सकता हूं और मेरी प्रजा भी रह सकती है, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। यह कहकर पृथ्वी में जो गर्व था, अहंकार था, व्यक्ति का गर्व अहंकार तब बढ़ जाता है जब वो सोचता है कि मेरे ऊपर दूसरे लोग निर्भर करते हैं, मेरे बिना ये जीवित नहीं रह सकते। तो उसका अहंकार बढ़ जाता कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। तो भगवान दर्प दलन है, दूसरों के अहंकार को चूर्ण विचूर्ण कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, क्योंकि भगवान के सामने कोई अपना अहंकार को नहीं रख सकता। तो पृथ्वी में जो गर्व या अहंकार उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण पृथ्वी खाद्य शस्य प्रदान नहीं कर रही थी, तो महाराज पृथ्वी ने ऐसा कहकर उसके गर्व को चूर्ण विचूर्ण कर दिया, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। जिससे पृथ्वी अब नम्र भाव को अपनाएगी। ये भगवान की विशेष कृपा है। यदि भगवान किसी विशेष परिस्थिति में डालकर किसी भक्त के गर्व को चूर्ण कर देते, नष्ट कर देते, या किसी व्यक्ति के गर्व को, अहंकार को नष्ट कर देते हैं, तो ये भगवान की विशेष कृपा है इस पर। इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार में जो लोग अपने धन के कारण, अपने ऐश्वर्य के कारण अहंकार में मत है, जब मैं उन पर कृपा करता हूं पहले उनका धन नष्ट कर देता हूं, उसके धन को ले लेता क्योंकि यही अहंकार का कारण है। तो संसार में ऐसी चार वस्तुएं हैं जो व्यक्ति के अहंकार को वृद्धि करती है। और ये चार वस्तुएं क्या हैं? जन्म, ऐश्वर्य, सुतश्री, एधमान मदापुर, उच्च कुल में जन्म होना व्यक्ति के अहंकार को वृद्धि करता है, ऐश्वर्य धन संपत्ति को प्राप्त हो जाना जिसके कारण व्यक्ति का अहंकार वृद्धि प्राप्त हो जाता है, श्रुत अर्थात व्यक्ति का पांडित्य, बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है, बहुत सारा शास्त्र पढ़ा हुआ है, बहुत सारा सारी बातें को जानता है, उसके मन में अहंकार आ जाता है, मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, विद्वान हूं। और जो सुंदर है, श्री जो सुंदर है उसके मन में भी अहंकार है, मैं सबसे सुंदर हूं, क्या मिस वर्ल्ड कंपटीशन चल रहा है, कौन सबसे सुंदर है, मिस वर्ल्ड टाइटल उसको मिलेगा। ये सब अहंकार की वृद्धि करता है व्यक्ति। और यदि किस पर भगवान की कृपा है, तो भगवान की कृपा को प्राप्त हो जाता है, तो भगवान उसके अहंकार को पहले नष्ट करते हैं। किस प्रकार? जिसके कारण उसका अहंकार उत्पन्न हुआ है उसको नष्ट करें। जब उसका सब कुछ चला जाता है, व्यक्ति बाध्य होकर नम्र होता है, तब जाकर वो भगवान की शरण में जाता है, अन्यथा वो शरण में नहीं जाता, उसका अहंकार उसको भगवान से दूर रखता है। तो पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी के अहंकार को पहले नष्ट किया, जिससे कि पृथ्वी अब उनकी शरण में आए और उनके अनुसार कार्य करे। तो इसलिए पृथ्वी ने कहा कि तुम्हारी आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं अपनी योग शक्ति के बल पर मेरी प्रजाओं को धारण कर सकता हूं, मैं तुम्हें आवश्यक इसलिए करा हूं तुम पर कृपा करने के लिए। ये नहीं है कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये भगवान की विशेष कृपा है, जब वो हमारे अहंकार को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि हम नम्र होकर त्रिनादपि समीचीन भाव को अपना कर भगवान की शरण में जा सकते हैं, उनका नाम कीर्तन कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये उपदेश दिया अपनी शिक्षाष्टक में कि त्रिनादपि समीचीन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा। तो भक्त को तृण से भी अपने को नीच मानना चाहिए, वृक्ष से भी बढ़कर सहिष्णु होना चाहिए, अपने लिए सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, और दूसरों को सम्मान देने के लिए हर समय प्रस्तुत रहना चाहिए। तब जाकर भक्त समर्पित हो सकता है भगवान के चरणों में और भगवान का नाम कीर्तन कर सकता है। अहंकार बस जब वो ऐसा करना चाहेगा वो समर्पित नहीं हो सकता। इसलिए भक्त की शोभा है उसकी नम्रता, उसका अहंकार भक्त का भक्त की शोभा नहीं है। तो जो भी भगवान के परम भक्त हुए हैं ये सब समर्पित भक्त और नम्रता के मूर्तिमान प्रतीक हुए। तब पृथ्वी महाराज पृथ्वी देवी पर कृपा करके उसके अहंकार को नष्ट कर रहे हैं और इसके पश्चात हम देखेंगे पृथ्वी देवी कैसी किस प्रकार पृथ्वी महाराज की शरण में आती। जब अहंकार नष्ट हो गया अब वो शरण में आ रहे, नहीं तो पहले वो तर्क दे रही थी, अपनी महत्ता को प्रकट कर रही थी, किंतु जब उनके अहंकार नष्ट हो गया तब प्रणता प्रांजलि। दूसरे श्लोक में हम आगे पढ़ेंगे कि हाथ जोड़कर अब शरण में आई पृथ्वी महाराज, अब ज्ञान का उदय हुआ, अभी तक अज्ञान अंधकार में। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की निताय। जय गौर भक्त वृंद की निताय। गौर प्रेमानंदे हरि।